743-0003.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے سامعین, آپ کی آواز لے کر حسین قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم ہفتہ وار پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوتے ہیں, آپ کی محفل میں آتے ہیں, آپ کے ویوز اور کچھ نیوز اور کچھ تبصروں پر بات چیت کرتے ہیں. آج اکتوبر کی 19 تاریخ ہے اور 11 ٹمپریچر ہے, 11 سینٹی گریڈ ہے, اور اکتوبر کا آخری اشرہ شروع ہونے کو ہے, لیکن ابھی تک موسم الحمدللہ بڑا خوشگوار چل رہا ہے. نہ تو ٹھنڈ ہے, نہ ہی گرمی ہے, نہ ہی سردی ہے. اور اس کے ساتھ سفر مظفر کی آج 20 تاریخ ہے, اور اس حوالے سے آج 40 امام حسین علیہ السلام بھی ہے. پیارے سامعین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم WTOR 770 AM سے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام کسی وجہ سے ریڈیو پر نہیں سن پاتے تو ہم آپ کی خدمت میں نیٹ پر بھی اویلیبل ہیں, آپ ہمیں نیٹ پر بھی لائیو سن سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ www.eawaz.com پہ لاگ ان کیجئے اور لائیو کے آئیکن کو کلک کیجئے, ہم آپ سے لائیو جڑ جائیں گے. اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس انٹرنیٹ اور ریڈیو دونوں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, تب بھی آپ ہمارا پروگرام سیل فون کے ذریعے یا ہوم فون کے ذریعے سن سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ ڈائل کیجئے 647-557-1017, 647-557-1017. اس نمبر پہ ڈائل کیجئے, آپ ایک بیل ہوگی اور آپ ہم سے لائیو کنیکٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا کوئی ایڈ دینی ہے یا کوئی سجیشن دینی ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. میرے رابطے کا نمبر ہے 647-201-2213. میں رپیٹ کرتا ہوں, 647-201-2213. اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی کوئی رائے اسٹوڈیو میں دینی ہے, اپنے ویوز دینے ہیں, ہم جب اپنا ٹاک شو کریں گے اس میں اگر شرکت کرنی ہے تو آپ اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں کال کرنے کا نمبر ہے 416-620-1778, 416-620-1778. اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے وابستہ ہوں اور پچھلے 11 سال سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں. پچھلے 11 سال سے میں آپ لوگوں کے کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں, اور میرا اس فیلڈ کے اندر 11 سال سے سروائیو کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کا ٹرسٹ گین کیا ہے, آپ لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے الحمدللہ ہزاروں نہیں تو کم سے کم سو میں, یعنی سو کے حساب سے میں نے ٹرانزیکشنز کی ہیں, اور بلکہ اب تو میں ایزیلی کہہ سکتا ہوں کہ ملینز آف ملٹائی ملینز کی ٹرانزیکشنز کر چکا ہوں اب تک کمبائن میں. اور اگر آپ کو کسی قسم کی پراپرٹی سیل کرنی ہے, بائی کرنی ہے, آپ نے اپنے خوابوں کا گھر لینا ہے یا انویسٹمنٹ کرنی ہے ریزیڈینشیل میں یا کمرشل میں, اگر کسی قسم کی آپ کو ٹرانزیکشن کرنی ہے تو آپ میرا نمبر یاد رکھ سکتے ہیں. میرے رابطے کا نمبر ہے 647-201-2213, 647-201-2213. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں سیکنڈ مارگیج کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. میں سیکنڈ مارگیج میں بھی خاصی مہارت رکھتا ہوں, اور میں نے بہت ساری کمیونٹی کے لوگوں کی اس میں ہیلپ بھی کی ہے. سیکنڈ مارگیج بیسیکلی آپ کے لیے ایک کوشن کا کام کرتی ہے. اگر آپ کسی وجہ سے فائنینشیل کرائسس میں آ گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی جاب بھی لوز کر دی ہے, کریڈٹ بھی خراب ہو گیا کسی وجہ سے, کیونکہ یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کینیڈا میں کہ ہم لوگ جاب پر زیادہ انحصار کرتے ہیں, اور ہم چیک ٹو چیک اکثر موسٹلی فیملیز چیک ٹو چیک ہی چل رہی ہوتی ہیں. جاب جانے کی وجہ سے سارا فائنینشیل سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے سم ٹائم ہم اپنا کریڈٹ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس گھر ہے اور اس میں ایکویٹی موجود ہے तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड मॉर्गेज अरेंज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप आपके अपने पेंडिंग बिल्स पे करके या जो भी कलेक्शन एजेंसीज आपको तंग कर रही हैं उनको पेमेंट करके या जो भी वट एवर आपकी क्राइसिस में पेंडिंग पेमेंटें हैं उनको पे करके आप अपना क्रेडिट पहले तो डेवलप कीजिए। इन द मीन टाइम आपको कोई अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो ये एक साल के लिए होती है। एक साल के बाद आप क्या कीजिए कि आपको जब जॉब भी हो गई, क्रेडिट वापस आ गया, तो आप बैंक से उसको अपने घर को दोबारा रीफाइनेंस करवाइए और वो सेकंड मॉर्गेज से अपनी जान भी छुड़वा लें। उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप दोबारा सेकंड मॉर्गेज से अपनी जान छुड़ा सकते हैं और रीफाइनेंस किस तरह करवाएंगे, वो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको अपने घर पर इक्विटी लोन लेना है तब भी आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मेरे रابطے का नंबर है 647-201-2213। मैं रिपीट करता हूँ, 647-201-2213। मेरे पास कुछ ऐसे लेंडर मौजूद हैं जो कि ना तो आपकी जॉब देखेंगे ना ही आपका क्रेडिट देखेंगे। ज़ीरो जॉब, ज़ीरो क्रेडिट, बट एक चीज़, आपके घर में कुछ इक्विटी होना ज़रूरी है, उसके ऊपर आपको सेकेंड मॉर्गेज मिल जाएगी और आपको मैं 24 आवर के अंदर अप्रूवल लेकर दे सकता हूँ। तो मेरे रابطے का नंबर अगेन 647-201-2213। और हम अपने स्पॉन्सर का पैगाम आपके साथ शेयर करते चलें कि आइडियल किचन कैबिनेट वाले जो कि मिल्क वर्क का काम करते हैं, इनका कहना है कि आपने किसी किस्म का मिल्क वर्क करवाना है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अगर ऑफिस बनवानी है, मेडिकल ऑफिस बनवाना है, फार्मेसीज हैं, डॉक्टर्स ऑफिस है, लॉयर्स ऑफिस है, किसी किस्म का भी स्कूल का काम है या किसी किस्म का आपको मिल वर्क करवाना है डिज़ाइन के साथ, आपको अप्रूवल करवा कर देते हैं। पहले अप्रूवल लेंगे फिर आपका काम करेंगे बहुत ही मुनासिब कीमत पर। अज़र साहब से रابطہ कीजिए 416-414-0997 और ये 3 Edwick Drive के ऊपर वाक्य हैं। इनका मेजर इंटरसेक्शन गोरवे और विलियम पार्क्सवे बनता है। आप इनसे रابطہ कर सकते हैं और आपको ये बेहतरीन प्राइस देंगे, बेहतरीन डिज़ाइन देंगे। तो प्यारे सामीन, हमारे साथ इस वक्त सुहेल साहब कम्युनिटी अनाउंसमेंट लेकर हाजिर हो गए हैं, आप लोगों की खिदमत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे। जी सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम कासिम भाई और आपके तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कम्युनिटी के हवाले से?
जी कासिम भाई, जैसे मैंने पिछले हफ्ते अर्ज किया था कि जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ट्रिब्यूट देने के लिए और उनको सलाम अर्ज करने के लिए वहाँ करबला में नजफ से वॉक करते हैं तकरीबन 85 किलोमीटर, तो हम उनसे सॉलिडेरिटी में यहाँ डाउन टाउन में, हम वहाँ तो नहीं जा सके हमारी बदकिस्मती कह लें, लेकिन हम यहाँ तो कम से कम उनके साथ इजहार यकजहती कर सकते हैं, उनके साथ सॉलिडेरिटी शो कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने वॉक का यहाँ इत्माम किया है कि जो स्टैचन एवेन्यू जो एग्जीबिशन प्लेस है लेक शोर के ऊपर, वहाँ से 1 बजे स्टार्ट होगी और तकरीबन 3-2 या 3 घंटे में हम सिटी हॉल में 361 यूनिवर्सिटी रोड पहुंचेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी काविश है कि हम वहां तो नहीं पहुंच सके, लेकिन हम उनसे इजहार यकजहती के तौर पर इस वॉक को कर रहे हैं और उसी काफिले में शामिल हो गए। और मैं आखिर में कासिम भाई, अलामा इकबाल का एक शेर है कि जिसका मैं समझता हूँ कि लिटरल मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको अगर समझ जाए तो हमें इमाम हुसैन की जो काविशें हैं, जो उनकी शहादत है, जो उनकी कुर्बानी है, उसकी कुछ थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि अगर करबला की अगर तफसीर हो जाए तो मुसलमानों का किबला रौज़ा शब्बीर हो जाए।
जी,
मैं कहता हूँ इस शेर को समझें, इसकी गहराई को समझें, तो इंशाल्लाह सारे मुसलमान, सारे इंसानों का जो है दिलों का काबा वो इमाम हुसैन की ज्यारतगाह हो जाएगी। और इमाम हुसैन की ज्यारतगाह का मतलब ये है कि आप सही रास्ते की तरफ आ गए हैं, रिगार्डलेस मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, कोई उससे बालातर हो के आप इंसानियत के लेवल पे आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करेंगे और उनके काफिले में शामिल हो जाएंगे।
That's great. असल में प्यारे सामईन, बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी एक फिरके, किसी एक जमात یا کسی ایک ریجن یا ریلیجن کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، بلکہ انہوں نے دنیا میں قیامت تک کے لیے آنے والے ظلموں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جو بھی ظلم کرے اس کے لیے خلاف تھی، کیونکہ امام کا فرمان تھا کہ مثلوں کا مثلی کی آپ ساری دنیا جانتی ہیں، کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ بھی جہاں بھی کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں اور اس واقعے میں شامل ہوں، اور کیونکہ یہی حسینیت ہے، حسینیت نام ہی انسانیت کا ہے، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ سہیل بھائی، جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی ہمارے سامعین میں سے کوئی انفارمیشن لینا چاہے تو وہ کس نمبر پہ آپ سے رابطہ قائم کریں۔
جی بالکل قاسم بھائی، آپ نے بہت خوبصورت کہا، واقعی یہ انسانیت کا پیغام ہے، یہ ہر مذہب، ہر فرقے، ہر رنگ و نسل سے بلند و بالا ہے، اور سب اس میں شامل ہوں، اور میرا نمبر ہے 647-405-7712۔ ونس اگین اٹس 647-405-7712۔ یہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے arbainwalk.ca، اور سوشل میڈیا پہ بھی، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ ہمارے پیجز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔
تو پیارے سامعین، اگر آپ کے بچوں نے، کسی نے ولنٹیئر کام کرنا ہو، تب بھی وہ سہیل عباس صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ان کے رابطے کا نمبر ہے 647-405-7712۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، 647-405-7712۔ اور اربعین کی واک کل 1 بجے شروع ہوگی، شارپ 1 بجے 1 سٹریچن ایوینیو سے اس پر یہاں پر گیدرنگ ہوگی، اور یہاں سے آپ سب لوگ اکٹھے ہو کر آپ ایک یزیدیت کے خلاف، ظلم کے خلاف، دنیا بھر میں جہاں بھی یزیدیت ہو رہی اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ کرتے ہوئے نکلیں گے، اور امام کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ بہت شکریہ سہیل بھائی صاحب،
تھینک یو ویری مچ قاسم بھائی،
تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ ہم پروگرام کو آگے لے کے بڑھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت کلام جو کہ امجد صابری صاحب کی آواز میں ہے، اور یہ ہمارے ایک بڑے پیارے لسنر ہیں، ان کی فرمائش پر تھا، تو میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں۔
رغبت نہیں تعجب ہے تجھے، نماز کی فرصت نہیں تعجب ہے،
نماز کی فرصت نہیں تعجب
ہے، تیرے پاس ہے، تیرے پاس بہت وقت غیبتوں کے لیے ہے، تیرے پاس بہت وقت غیبتوں کے لیے، تجھے نماز کی فرصت نہیں تعجب ہے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ،
ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔
وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز،
جسے منظور ہے نماز،
مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز،
مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز،
شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز،
شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز،
شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز،
شیطان کی پہنچ سے بہت
مسکن بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے۔ सजदे में जाके दे,
मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे,
बरकत हजार साल में लाती है ये नमाज,
हजार साल में लाती है ये नमाज,
जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज,
जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज,
बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज,
बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज,
बंदे को अपने रब से
वेलकम बैक टू द शो प्यारे सामीन, एक मरतबा फिर आप सब लोगों को वेलकम है, खुश आमदेद है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त कनाडा की आबो हवा में मौसम के हिसाब से तो कुछ खुन की कुछ बेहतरी आती जा रही है, सर ठंड आती जा रही है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी जो है गर्मा गर्मी आती जा रही है, यानी मौसम के अपोजिट चल रहा है। इलेक्शन के हवाले से कनाडा के माहौल में फुल गर्मी इस वक्त छाई हुई है और ऐसा लगता है कि कांटेदार मुकाबला है। एनडीपी ने खासी पॉपुलैरिटी गेन की है, लेकिन अभी भी स्टिल कुछ भी वसूख से कहना काबिल वक्त होगा। एंड इस वक्त लिबरल अभी भी पहले नंबर पे, पहले पायदान पर है, सेकंड नंबर पे उसी तरह कंजर्वेटिव हैं, लेकिन एनडीपी तीसरे नंबर पर आ रही है। हमने इस वक्त अपने एक कैंडिडेट हैं एनडीपी के एजेक्स से, उनको हमने जहमत दी थी कि वो हमारे साथ लाइन पर आएं और हमसे बातचीत करें। शौकत साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ चुके हैं, शौकत मलिक साहब जो कि एजेक्स की राइडिंग से एनडीपी के उम्मीदवार हैं, एनडीपी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम मलिक साहब आपको खुशामदीद है प्रोग्राम आपकी आवाज में।
बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम सुनने वाले तमाम लिसनर्स को मेरा सलाम नमस्कार और सत श्री अकाल।
मलिक साहब हम आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ हमें अपने मुतालिक बताएं और आप साथ में सिर्फ ना सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दें बल्कि हमें यह भी बताइए कि आपने आप कब से कनाडा में हैं और आपने कम्युनिटी के लिए क्या कुछ किया है। हेलो
जी जी आप जी कसम भाई, सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि मुझे कनाडा में तकरीबन 27 साल हो गए हैं और इन 27 सालों में मैं मुख्तलिफ तरीकों से कम्युनिटी की खिदमत में पेश हूँ। दो तरीकों से इंसान कम्युनिटी की खिदमत करता है, एक तो आप कमर्शियल आस्पेक्ट से जो भी कामकाज कर रहे होते हैं, आपकी मुलाजमत हो, आपका कारोबार हो, उस हवाले से आप कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। दूसरी ये है कि चैरिटेबल हवाले से आप कम्युनिटी की कॉजेस के लिए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल करम से दोनों ही एतबार से मैंने कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। पिछले तकरीबन 25 सालों से मैं तकरीबन 13,000 क्लाइंट को एज ए कम्युनिटी एडवोकेट सर्व कर चुका हूं और जितनी भी आपकी ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें सोशल ट्रिब्यूनल है, आपकी जो है वो डिसेबिलिटी की ट्रिब्यूनल है, टैक्स ट्रिब्यूनल है, वहां पर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलिंग द एप्लीकेशंस ऑल द वे टू फाइटिंग दैट केस टू द कोर्ट ऑफ लॉ, ये सब मैं करता आ रहा हूँ। उसके बिल्कुल बराबर में एज ए फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द चिल्ड्रन डिग्निटी फाउंडेशन मैंने अपने दोस्त रियाज हुसैन साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान में 3 खैराती स्कूल जो है वो बनाए हैं। पिछले 17 साल से वो स्कूल चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने उन स्कूलों को बिल्कुल जो है वो गैर तजारती बुनियादों पर रफा यामा के लिए और कार्य खैर के लिए जो है वो खोला है, जहाँ कोई भी बच्चा फीस नहीं किसी बच्चे से ली जाती, ये काम हमने किया है। कनाडा के अंदर जो है वो पिछले 17 सालों से मैंने जितने भी डिसेबल कैनेडियंस हैं उनके लिए खसूसी खिदमत ये अंजाम दी है कि उनके जो डिसेबिलिटी के केसेस होते हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ और खास तौर पर ऐसे कैनेडियन जो डिसेबल हो जाते हैं जिनको मोबिलिटी डिवाइसेस की जरूरत होती है उनको हम डिवाइसेस दिलवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली नो कॉस्ट टू देम। और उसके साथ साथ जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए हमने एक खास प्रोग्राम शुरू कर रखा है। यहाँ पर जो कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्या होता है कि अगर आप एनुअल इम्तहान में नाकाम हो गए हैं तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री इम्तहान मौजूद होता है, यहाँ पर कनाडा में ऐसा नहीं होता, तो हमने एक तरीका कार निकाला है जिससे हम सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर उन तालिबे इल्मों को जो अपनी लापरवाही की वजह से या किसी और वजह से हाई स्कूल नहीं कर पाते, तो वो तमाम जिंदगी हाई स्कूल का डिप्लोमा लिए बगैर रह जाते हैं। हमने उनको हाई स्कूल का डिप्लोमा दिलाने का ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और ये भी बड़ी ही कामयाबी के साथ जारी है। तो ये वो मुख्तसर सी खिदमात हैं जो मैं पिछले 27 या 25 सालों से कम्युनिटी को देता चला आ रहा हूँ।
वेरी गुड। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए आप कि ये तो आपके पर्सनल लेवल पर हो गया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल के एजेक्स कम्युनिटी या होल कनाडा की मैं बात करता हूँ, अगर वो एनडीपी को सेलेक्ट कर ले और एनडीपी पावर में आ जाए, तो एनडीपी पार्टी इटसेल्फ, यानी कि हम बात करें पार्टी लेवल पर, तो ये एनडीपी की जो पार्टी है वो एक आम आदमी के लिए किस तरह सूदमंद साबित होगी?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एनडीपी पार्टी जो है वो है ही आम आदमी की पार्टी। आप यकीन जानिए, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई भी आदमी जाकर वो है वो रिसर्च करे, इंटरनेट के ऊपर बैठे और पार्टी के प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करे। आप एनडीपी को लिबरल के साथ कंपेयर करें, आप एनडीपी को कंजर्वेटिव के साथ कंपेयर करें, आप एनडीपी को किसी दूसरी पार्टी के साथ कंपेयर करें, आपको ये जानकर इंतहाई खुशी महसूस होगी कि एनडीपी आम आदमी के लिए काम करती है। जैसे अभी जो आज 2019 में एनडीपी प्लान लेकर आई है यूनिवर्सल फार्माकेयर का और यूनिवर्सल डेंटल केयर का, मैं डोर नॉकिंग के दरमियान काफी लोगों से मिला और मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहीं बताइए कि कब आप लास्ट टाइम जो है वो अपना डेंटल के पास गए थे, डेंटिस्ट के पास? वो कहने लगे मुझे 5 साल हो गए। तो मैंने कहा 5 सालों में आपको कभी दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लमें तो मुझे बेशुमार हुई, बात यह है कि ये कॉस्ट थी जो मुझे जाने से रोक रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटेंडेड हेल्थ प्लान के तहत आपकी जो कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन है वो भी हेल्थ कार्ड पे कवर हो जाएगी और जो कॉस्ट ऑफ डेंटल नीड है वो भी हेल्थ कार्ड पे कवर हो जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट यू हैव इंश्योरेंस और यू डोंट हैव इंश्योरेंस। तो ये वो आम आदमी के लिए काम है कि जो एनडीपी के पास एक सॉलिड कंक्रीट प्लान मौजूद है, ना लिबरल के पास है ना कंजर्वेटिव के पास है।
That's great. अच्छा ये तो मैंने भी देखा भी है मीडिया पर, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उस पर भी आपका मैनिफेस्टो, आपका जो मंशूर है वो चल रहा है कि आप ने कहा है कि जो यूनिवर्सल फार्मा केयर है या इसके अलावा जो आपने डेंटल कवरेज के लिए कहा है, ये अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एक आम पब्लिक, एक आम आदमी को, तो इसका क्या इफेक्ट है, ये आप किस तरह अफोर्ड करेंगे, क्या आप टैक्स इंक्रीज करेंगे, आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कि जो एक आम आदमी पर बर्डन भी ना पड़े, यानी टैक्स इंक्रीज भी ना, कोई आपकी पार्टी ने कोई मंशूर कोई प्लान दिया है इसके मुतालिक?
जी देखिए, कोई भी पार्टी जब अपना प्लान जो है खासतौर पर वो प्रपोज करती है तो बगैर किसी सॉलिड होमवर्क के नहीं होता। आपके ही प्रोग्राम के खालिद जमाल साहब इसी तरह कल बात कर रहे थे, मैं रेडियो बहुत कम सुनता हूँ, इत्तेफाक से मैं गाड़ी में था और वो रेडियो लगा हुआ था मेरे साथ, एक साहब थी उन्होंने लगा रखा था, और वो ये कह रहे थे कि यार कोई एनडीपी से पूछे, ये उनकी वर्डिंग थी, कि कोई एनडीपी से पूछे कि फार्मा केयर और डेंटल केयर के लिए उनको पैसा कहाँ से आएगा या कहाँ से वो इसको जनरेट करेंगे फंड्स को। तो अगर वो खालिद जमाल साहब मेरी बात सुन रहे हों, सॉरी माजिद जमाल साहब मेरी बात सुन रहे हों, या उन तक ये बात पहुंच जाए और बाकी लोग जो सुन रहे हैं प्रोग्राम वो भी इस बात को अच्छी तरह जान लें। देखिए एनडीपी क्या कर रही है कि एनडीपी एक नया जो टैक्स, सबसे पहले तो एनडीपी किसी पब्लिक के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रही, आपकी प्राइमरी रेजिडेंस है, आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, उसके ऊपर एनडीपी किसी किस्म का कोई टैक्स इंक्रीज नहीं कर रही, वही टैक्स रहेगा जो आप ऑलरेडी दे रही हैं। अब आगे बिजनेसेस की बात, स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस, वो 9% टैक्स जो है वो ऑलरेडी दे रहे हैं, एनडीपी का एजेंडा ये है कि वो टैक्स 9% ही रहेगा, उसको बिल्कुल कतन एक पैनी भी नहीं बढ़ाया जाएगा। अलबत्ता जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल साइज बिजनेसेस हैं, उनको फायदा ये होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक पैकेज ऑफ बेनिफिट्स देती हैं, उस बेनिफिट्स के अंदर जो है वो डेंटल कवरेज होती है, आपका सीपीपी प्लान होता है, आपकी ईआई होती है, ये सारा प्लान जो है आप ये समझ लीजिए कि एक पर्सन ए है जो कि पूरे साल के अंदर 10 या 20 हज़ार जो है वो अपने एम्प्लॉय को ये पैकेज देता है। अब जब हम ये प्लान लेकर आते हैं तो ये 10 या 20 हज़ार जो है ये स्मॉल बिजनेस ओनर की सेविंग हो जाएगी और ये रेवेन्यू जो है ये उसके अपने लिए सेव हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ये इनडायरेक्ट फायदा पहुंचेगा स्मॉल बिजनेसेस को और जो मीडियम साइज बिजनेसेस के। अब आ जाइए कि एनडीपी के पास पैसा कहाँ से आएगा, वो क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ। उसमें यह है कि एनडीपी एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रही है सुपर रिच कैनेडियंस के लिए। क्वेश्चन ये है कि वो सुपर रिच कैनेडियंस कौन है। हमने सुपर रिच की डेफिनेशन ये बनाई है कि वो कैनेडियन जो 20 मिलियन डॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं या 20 मिलियन डॉलर की वेल्थ रखते हैं, वो सिर्फ अपनी वेल्थ का 1% टैक्स देंगे एंड दैट मनी विल बी रोल्ड ऑन टू प्रोवाइड ऑल दीज बेनिफिट्स टू कॉमन कैनेडियंस और टू कॉमन कैनेडियंस ऑल ओवर इन कैनेडा। तो उसके लिए हमारे पास वहां से अनफ फंडिंग आ रही है जो कि इन बेनिफिट्स को प्रोवाइड कर।
बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन, कल का दिन बाकी है फाइनल इलेक्शन के वोटिंग में और फाइनल रिजल्ट्स आने में। परसों शाम तक यानी मंडे शाम तक 6 बजे के बाद तक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 9-10 बजे तक सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आप आखिर पे क्या कहना चाहेंगे, एक दिन बीच में बाकी है तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
सुनने वालों को सबसे पहले तो ये कि कम्युनिटी का प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि इसके जरिए कम्युनिटी ही ज्यादा जो है वो हमारी उर्दू जबान जानने वाले या हिंदी जानने वाले या पंजाबी जानने वाले इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो उसी हवाले से मैं मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए जहां पर भी वोट जो है वो ओपिनियन के ऊपर दिया जाता है, वोट अक्सरियत पे नहीं दिया जाता। मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या सुनने में आता है कि हमारे लोग किसी भी खास पार्टी को, वो लिबरल हो या उसके पीछे लग जाते हैं और एक भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। मैं तमाम सुनने वालों से ये इल्तमास करूंगा कि अपने हमसाये के कहने पे वोट मत दें। आप अपना जाती ओपिनियन जो है उसको जो है वो आप उसको विजुअलाइज करें और जाती ओपिनियन की बुनियाद पर आप वोट दें और वोट आप दें पार्टी के प्लेटफॉर्म को। आप वोट दीजिए पार्टी के प्लेटफॉर्म को, वोट दीजिए उस कैंडिडेट को जो आपके सामने आया है। इस शक्ल में मैं ये कहना चाहूंगा कि एजेक्स के अंदर चूंकि मैं कम्युनिटी का वाइस कैंडिडेट हूं, बाकी दोनों पार्टीज के जो लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरी कम्युनिटी से ये पुरजोर जो है वो अपील है कि आप अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें। मैं हारूं या जीतूं, आपका वोट जो है वो कम्युनिटी बेस्ड पे मेरे कॉर्नर में आना चाहिए, एनडीपी को कॉस्ट होना चाहिए। इससे बेशुमार फायदे होंगे। पहली बात ये होगी कि हम यहाँ पर कंसेंसस डेवलप कर जाएंगे। आपको बाद पता नहीं चलता बाद में जब ये रेशियल प्रोफाइल बनते हैं कि किस इलाके में कौन से कम्युनिटी के कितने लोग बसते हैं, वहां पर ये चीज बहुत ही ज्यादा किरदार अदा करती है कि भाई इस कम्युनिटी का एक बंदा यहाँ से खड़ा हुआ था, उसको इतना उसका वोट बैंक बना। वहां से हम जब आने वाले वक्त में हमने किसी मस्जिद के लिए तौसी लेनी है, किसी मंदिर के लिए, किसी टेंपल के लिए, किसी गुरुद्वारे के लिए कुछ जगह मांगनी है, तो हम वहां पर उस कंसेंसस के जरिए आगे आते हैं कि हाँ हमारे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, साउथ एशियन कम्युनिटी के या पाकिस्तानी कम्युनिटी के इतने लोग यहाँ आबाद हैं। तो खुदारा मेरी आपसे अपील है कि अपने किसी दोस्त अहबाब की बात मत सुनिए, आप अपना वोट अपने ओपिनियन पे कॉस्ट करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त आज की पार्टीज में सबसे बेहतरीन एजेंडा जो है वो एनडीपी का है। आपका कोई वोट जाया नहीं होगा, वोट उस बंदे का जाया होगा जो वोट कास्ट नहीं करेगा। जो अपनी ओपिनियन पे वोट कास्ट कर देगा वो बंदा अपने आप में डिग्निफाइड फील करेगा कि आई कास्ट माय वोट इन अकॉर्डेंस विद माय ओपिनियन।
तो प्यारे सामईन, कहने का मकसद ये है कि आपके वोट की मिसाल ऐसे है जैसे पानी का एक कतरा। ये पानी का एक कतरा अगर किसी सांप के मुंह में चला जाए तो जहर बन जाएगा और किसी सीप के मुंह में चला जाए तो मोती बन जाएगा। आपको अपनी अपनी राय आपने खुद देनी है और उस राय को कायम भी आपने खुद करना है कि क्या आपके और आपके आने वाली नस्लों के लिए बेनिफिशियरी रहेगा या नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ 4 साल के लिए आती हैं तो आप ट्रायल बेसिस पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पार्टीज़ अगर अच्छी सिलेक्ट होकर आ जाएं तो 4 साल में वो मुल्क को कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं और अगर ख़राब आ जाएं तो 4 के बजाय 40 साल तक पीछे भी ले जा सकती हैं। सेम इसी तरह अगर कोई अच्छी पार्टी आ जाए तो वो 4 साल में 40 साल आगे भी मुल्क को ले जा सकती है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि अपना वोट ज़रूर दें और मलिक साहब अगर आप जाने से पहले आप अपना नंबर हमारे सुनने वालों को शेयर करना चाहें तो आपकी नवाजिश होगी, आप अगर अपना फोन नंबर हमारे सुनने वालों को बताएं।
बहुत शुक्रिया कासिम भाई, फोन नंबर मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मैं छोटी सी बात जाने से पहले साथ की जोड़ दूं कि देखिए कोई भी पार्टी एनडीपी है, मिसाल के तौर पर एनडीपी की गवर्नमेंट बनती है या नहीं बनती, एनडीपी की अपोजिशन बनती है या नहीं बनती, इससे एक फर्क बुनियादी लेवल पर हुकूमती सतह पे जरूर पड़ता है। दूसरी जानब हमें ये देखना होता है कि हमने अपने इलाके से अगर एक रीजनेबल कैंडिडेट को मुंतखब करके भेज दिया है जो कि हाउस ऑफ कॉमन में बैठा हुआ है, जो हमारे मसाइल को अच्छी तरह समझता है, कंसर्न्स को जानता है, उनको एड्रेस करने की एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पुट माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, तो आई हैव द मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू मूव दोज मोशंस, to present your problems and I have the ability to have them resolved regardless of the fact agar pure hall mein main ek banda bhi baitha hua hu tab bhi main aapke masail ko address kar sakta hu aur uske upar opinion leke aapko uska jawab de sakta hu is ye baat dhyan mein rakhiye mujhe jo hai wo raabta karne ke liye mera phone number hai 6475751010 shaukat mare par ajax mp आप मुझे अभी और कल जब भी कोई क्वेश्चन हो किसी भाई बहन का मुझे प्लीज इस नंबर पे कॉल करें और मैं आई विल बी मोस्ट प्लीज टू गेट यू ऑल द आंसर्स।
थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, का नंबर एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 6475751010 647 575 1010। मलिक साहब एजेक्स की राइडिंग से एमपी के उम्मीदवार हैं एनडीपी के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया।
नो प्रॉब्लम, थैंक यू कासिम भाई, गुड डे।
थैंक यू। प्यारे सामईन, ये तो थी कैनेडियन इलेक्शन की बातचीत और हम अब थोड़ा सा अपने टॉक शो की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। टाइम ऑलमोस्ट हमारे टॉक शो का हो चुका है। हम पाकिस्तान की सियासत पर अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त जो पाकिस्तान में जिस चीज़ की गहमा गहमी या गर्मा गर्मी है वो है आज़ादी वॉक की। आज़ादी वॉक के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब निकल रहे हैं, उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से रابطे करके एक फोर्स भी बना ली है जो कि वो उनका कहना है कि 15 लाख से ज़्यादा लोगों को वो लेकर इस्लामाबाद में धरना देना चाहते हैं, लेकिन धरना देंगे या नहीं देंगे अभी इसका कोई हतमी ऐलान उन्होंने नहीं किया है, और अगर वो धरना देंगे तो कितने दिन के लिए देंगी। मुझे एक छोटा सा वाकया अपने स्कूल के अपने कॉलेज के ज़माने का याद आ रहा है। एक मरतबा क्या हुआ कि एक कार एक्सीडेंट, कार तो नहीं बल्कि ट्रक एक्सीडेंट हुआ, और हुआ वो इस तरीके से था कि ट्रेन, मज़दूरों की जो ट्रेन है वो लदी फदी गुजर रही थी और एक ट्रक बिल्कुल क्लोज करके पार्क किया गया जिससे मज़दूर टकरा कर गिरे और उनमें से कई बेचारे मौके पर ही हलाक हुए। उसमें क्या हुआ कि लोगों ने मुश्तइल होकर उस ट्रक को आग लगा दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या उस ट्रक का कुछ फॉल्ट था? ट्रक तो किसी ने ऑपरेट किया, वो तो एक बेजान चीज़ थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक हिस्सा था, पाकिस्तानी इकोनॉमी में एक कतरा था जिसको कि आपने ज़ाया किया, उसको आग लगा दी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ठीक है, आपका राइट था एहतजाज करने का, आपके गम गुस्से का हम एहतराम करते हुए, हम अगर आपकी इस बात को देख भी लें तो आप उस ड्राइवर से प्रोटेस्ट करें, इंतजामिया से प्रोटेस्ट करें, ना कि आग लगा दें उस ट्रक को। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि मौलाना साहब जो धरना देने निकल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है अगर वो कुछ किसी किस्म का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो आज़ादी मार्च कर भी रहे हैं तो उनका राइट है, ठीक है फाइन, बट अब क्या इससे एक बेजान चीज को जो कि इकोनॉमी का हिस्सा है पाकिस्तान की, उसको नुकसान पहुंचाने से क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या मौलाना आज़ादी मार्च करने जो निकले हैं, अब इसमें से एक और सवाल है कि मौलाना आज़ादी मार्च करने के लिए निकले, आज़ादी किस चीज़ की? जब पाकिस्तान की आज़ादी थी तो अगर आपके वालिद साहब कहते थे कि शुक्र है कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं हैं, कि हमने पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम कतन शामिल नहीं हैं। फिर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को आपने कहा ये तो काफ़िरे आज़म है, आपके वालिद साहब ने। आज तक आपने यौम आज़ादी मनाया, पिछली दफ़ा जब आप इलेक्शन हारे तो आपने यौम आज़ादी मनाने से इनकार कर दिया, आप अब आज़ादी मार्च के लिए निकल पड़े। तो अपनी राय दीजिए, स्टूडियो में कॉल कीजिए, स्टूडियो का नंबर है 416-620-1778। क्या आज़ादी मार्च होनी चाहिए या ये सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक धचका है? हम पहली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज़ में आपको वेलकम है।
जी मैं ये सुनने में इत्तेफाक करता हूँ, मैं तो एक शायर हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, बस दो शेर अर्ज करूँगा और बाकी का प्रोग्राम मैं भी सुनूंगा।
जी बिस्मिल्लाह।
वो आए नहीं शिकवा नहीं कोई खुदा से,
जी
वो आए नहीं शिकवा नहीं कोई खुदा से, पर्दा मेरे दरवाजे का हिलता है हवा से।
सुभान अल्लाह जी।
पर्दा मेरे दरवाजे का हिलता है हवा से। और दूसरा शेर करूंगा, मेरी रगों में गर्दिश खून है अभी नहा, मेरी रगों में गर्दिश खून है अभी नहा, जो नस्ब हो चुका हो वो पत्थर नहीं हूँ मैं, जो नस्ब हो चुका हूँ वो पत्थर नहीं हूँ मैं। मेरा नाम शिकस्त है बनारसी। आप बहुत उमदा प्रोग्राम पेश करते हैं और मैं भी दूसरे लोगों को मौका देता हूँ और सुनूंगा आपके मजीद प्रोग्राम को। इसी बात के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा,
खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल की तरफ बढ़ते जी, टॉक शो में आप शिरकत करने के लिए 416-620-1778 पर डायल कर सकते हैं। जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज़ में आपको वेलकम है। जी कौन सा बोल रहे हैं?
भाई
जी। वालेकुम
अस्सलाम, असलम बोल रहा हूँ भाई।
असलम साहब क्या कहना चाहेंगे?
आपने अपने इंट्रो में इतने प्रश्न उठा लिए तो मैं कोशिश करूंगा कि एक मिनट में कुछ आपकी
नवाजिश। आपकी शिरकत का शुक्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे सर?
ओके शादी की।
हेलो
हेलो
जी जी, आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही, रेडियो की आवाज़ कम कर दीजिए। हेलो, लगता है कुछ कॉल में डिस्टर्बेंस। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? जी
जी, अभी आवाज सर क्या हो गया था एकदम।
जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर?
भाई आजादी किस चीज से होती है? आजादी होती है गुलामी से। तो आपने कहा कि आजादी किस लिए कर रहे हैं, आजादी मार्च क्यों कर रहे हैं? आजादी होती है गुलामी से। गुलामी ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी कौम को गुलाम बना के रखा हुआ है। बहुत जरूरी है कि इससे ये मुझे नहीं पता कि ये इससे आजादी अभी मिल जाएगी कैसे, लेकिन इसके लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से पपट लोगों को लेके आए और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दे, पाकिस्तान को 1980 से बचाने में हिस्सेदार बने, तो उस पर ये खड़े होना जरूरी।
चलिए बहुत शुक्रिया।
ये बात है। दूसरी बात आपने कहा इकोनॉमी का, इकोनॉमी भाई जितना नुकसान आपके पसंदीदा वजीर आजम इमरान खान साहब ने जितना नुकसान पहुंचाया था, इतना नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है, अभी इतना ज्यादा हो चुका है। जो सर्वे रिपोर्ट और जो रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की किसी के भी पढ़ ले, पाकिस्तान सिपाही के जहाने पर पंचायत कर गया है। चीजों से आजादी के लिए निकलना जरूरी है और मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ।
चलिए बहुत शुक्रिया जी, असलम साहब के सबने आप अपना व्यू सुने। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी मुख्तसर रखें। जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज़ में आपको वेलकम है।
हेलो
जी, कौन सा बोल रहे हैं?
जी मेरा नाम लतीफ है सर, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। लतीफ साहब क्या कहना चाहेंगे सर?
सर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यकीनन जब ये जो कुछ कर रहे हैं इससे मुल्क की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, काफी काम नहीं होगा। और रही बात आजादी मार्च की, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें पूरे पाकिस्तान को जो ना ये मौलवियों से आजादी चाहिए, क्योंकि ये दीन के नाम पे जो ना मुल्क को बांट रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं और खुद अपनी जेबें भर रहे हैं। ठीक है, इनका कोई अपना कामकाज नहीं, या मुझे बताएं कि इस बंदे का कोई अपना कामकाज है? सब ये बाहर से फंडिंग लेके और गरीब लोगों को और पुश करके ये सब सड़कों पे ले आते हैं। मैं तो ये समझता कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन मौलवियों से हमें आजादी दिलवाएं, फिर ही हमारा पाकिस्तान आजाद हो सकता है।
बहुत शुक्रिया सर जी,
थैंक यू सर।
थैंक यू जी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, वेलकम टू द शो, आपकी आवाज में आपको वेलकम है।
जी सॉरी, थैंक यू सर फॉर टेकिंग माय कॉल. बात यह है सर कि मुल्क जो ही एक बेहतरी की जानब चलना शुरू हुआ है तो मुल्क के जो दुश्मन हैं चाहे जो अंदर हैं या बाहर, अब पाकिस्तान को बाहर जो है उसका तो खतरा तकरीबन खत्म हो चुका है जिस वक्त से पाकिस्तान के पास अब एटॉमिक पावर आ चुकी है. जो अंदर के दुश्मन हैं, बाहर के दुश्मन, अंदर के दुश्मनों को जो है वो माली फंडिंग करते हैं और उनको तरीके बताते हैं कि किस तरह सबोताज करना है. ये जो मौलाना जो करने जा रहे हैं, नाम है मौलाना, ये आदमी अगर 6 दिन मैं शेव नहीं करूं ना तो मुझे भी दुनिया मौलाना मौलाना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मैंने एक दफा ऐसे ही शेव जो है वो मतलब करनी छोड़ दी थी और बंदा मुझे मौलवी कहना शुरू हो गया था. तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो मामला सीरियस होता जा रहा है. मकसद ये हमारा माहौल जो है वो समझता है कि दाढ़ी रख लो तो दाढ़ी के पीछे आपका हमालिया पहाड़ जो जितने पाप हैं गुनाह हैं वो छुप जाते हैं. क्यों? कि हम जिस माशरे से ताल्लुक रखते हैं वो उसका एक सबसे बड़ा मूर्खपना है, यानी एक बेवकूफी है. हमने अपनी अक्ल से नहीं सोचना है, हमने दाढ़ी देखनी है तो उसके लिए ग्रीन लाइट है. दैट पर्सन कुड बी द नंबर वन ट्रेटर और गद्दार या मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे. एज लॉन्ग एज ही इज वेयरिंग अ बियर्ड उसको हम ग्रीन लाइट देते ही जाएंगे, हम उसके साथ जहन्नम में चले जाएंगे. मगर ये नहीं अक्ल से सोचेंगे कि ये आदमी क्या सही कर रहा है या गलत कर रहा है. मौलाना मुल्क दुश्मन है, गद्दार है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है और मुल्क के दुश्मनों को खुश करने के लिए कर रहा है.
चले, बहुत शुक्रिया.
नुकसान करेगा, मगर ये है कि हमारी जो एजेंसीज हैं या जो कंट्रोल करने वाले हैं वो इसको भांप नहीं पाए. इसने जो नफरत तैयार कर रखी है लोगों की, जो मदरसों में अमेरिका या दुनिया के एक तरफ है, इंडिया या दूसरे मुल्क ये बताते हैं कि ये जो मदरसे हैं इनसे जो है वो टेररिस्ट बनते हैं. तो भाई ये हमारे लिए तो मौका है कि मौलाना की तंजीम को टेररिस्ट करार दे के इसके मदरसों को डिसमेंटल करें और उन बच्चों को हम जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाएं. कुरान पाक की तालीम तो जो है इमरान खान ने पूरे सूबा जो पख्तूनख्वा है उसमें 12वीं तक तो वैसे ही नाजरा कुरान आम कर दिया है. मौलाना क्या फिर स्पेशल कर रहा है, डंडा लोगों के हाथों में थमा के तो ऐना की फैलानी है.
बहुत शुक्रिया सर जी, आप कल हमने ली, आप सब ने आपके व्यू सुने. हम अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं. अगली कॉल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज करता चलूँ कि मैंने 2 बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टीज लिस्ट की हैं. एक तो मिसिस सागर रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है, 3400 स्क्वायर फीट का 5 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर है. अगर आप इसको मिस करेंगे तो रिग्रेट करेंगे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. इसके अलावा मैंने एक ब्रैम्पटन के सिटी सेंटर, ब्रैम्पटन के दिल के अंदर जो है, मैंने एक अपार्टमेंट 2 बेडरूम का 1 वॉशरूम के साथ लिस्ट किया है जो कि सिर्फ 380 में लिस्ट किया है. बहुत खूबसूरत प्राइम लोकेशन है. अगर इस प्रॉपर्टी को या इन जैसी किसी भी प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. मेरे रब्ते का नंबर है 6472012213, 6472012213. हम अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं. जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज में आपको वेलकम है.
हेलो
जी सर, कौन सा बोल रहे
हैं?
जी इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे सर?
बात यह है कि मौलाना में इतना दम नहीं था, किसी में भी इतना दम नहीं था. ये जितना दम जो दिया है ना, ये इमरान खान की नाहली, इसके नाहल लोगों ने दिया है, उसकी वजह से उनकी इतनी हिम्मत हुई है, वरना ऐसा नहीं हो सकता था. और अगर आपको याद होगा कज़ाफी का बेटा जो था खालिद, मेरा ख्याल है, उसने पहले सबसे पहले कहा था कि हम चूहों की तरह मसल देंगे अपने दुश्मनों को.
अब्दुल सलाम उनका नाम था जी, कज़ाफी के बेटे का. जी जी जी,
इनके जो साथ जो लोग हैं ना, उन्होंने भी ऐसी हरकत की है कि हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे, मौलाना का ऐसा कर देंगे. अपनी नाहलियत को जो छुपाने के लिए इन्होंने जो हरकतें की है ना, उसकी वजह से मौलाना खड़े हो गए. और दूसरी बात है कि मुझे एक बड़ा अच्छा, वो आज मैंने वो नजम सेठी का एक वो सुना प्रोग्राम, उसमें उसने कहा कि ये दोनों जो है ना, ये कश्मीर कॉज के दुश्मन है. ये इमरान खान भी जो कि इसको मतलब नाकाम रहे मोदी के मुकाबले में, और ये मौलाना भी जो 10 साल रहे कमेटी के मेंबर और कुछ नहीं करा. तो अब ये लोग इसको डिले के अंदर डाल के ना, लोगों को जहनी तौर पे उलझा के कश्मीर के मसले को लोगों के जहन से निकाल रहे हैं. और आई थिंक ये सही बात है, ये भी एक सही बात है. ये नाहल हुकूमत है, यानी पिछले जो लोग रुके थे अब वो अच्छे लग रहे हैं.
जी
आप देख लें मीडिया के ऊपर, वो लोग कह रहे हैं भाई पुराना पाकिस्तान दे दो.
चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. تھینک یو جی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں, میری ساری لائنیں بلنک کر رہی ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ ذرا مختصر رہیں. جی ویلکم ٹو دا شو, کون سا بول رہے ہیں؟
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کون صاحب؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں کس چیز کی, کہ ہمیں کرپشن کرنے کی پوری پوری آزادی ہونی چاہیے
جی,
ہمیں ہر قسم کی بے ایمانی کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے. آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ آج سے ایک سال پہلے ہمارا دشمن جو ہے نا
جی,
وہ جو باتیں ہماری بہادر افواج کے خلاف کرتا تھا نا, آج وہی ساری باتیں یہ مولانا صاحب اور ان کے چیلے چانٹے کر رہے ہیں. آج ان کو ڈیزل کے دو چار اور پرمٹ دے دیے جائیں تو یہ جناب جی سارا آزادی مارچ پورا ہو جائے گا.
چلیے بہت شکریہ سر جی, آپ کے ویو سب نے سنے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو, آپ کی آواز میں آپ کو ویلکم ہے.
جی السلام علیکم حسین بھائی, کیا حال ہے؟
جی وعلیکم السلام, جی اللہ کا شکر. کون سا بول
رہے ہیں؟ جناب والا
جی کامران صاحب.
بھائی پہلے تو یہ ان سے کوئی ان کا ایجنڈا تو ہے نہیں ہے, بس وہ کہتے ہیں کمیٹی بھی بنا دی ہے انہوں نے کہ چلو مذاکرت کرتے ہیں, بتائیں آپ کا ایجنڈا کیا ہے. کوئی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ کھول لیتے ہیں, ری کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں, لیکن کوئی نہیں کہتے ہیں مستعفی دے. کیوں کہ پاکستان اس وقت ترقی کرنے جا رہا ہے, ایسی قیادت میرا خیال ہے قائد اعظم کے بعد نہ آئی ہے اور شاید بھی آئے گی. اتنا اچھا کام اس وقت ہو رہا ہے. کے پی کے میں دیکھا آج دن میں پروگرام دے دے, کوئی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ عمران خان کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو فرشتہ آیا یقین کریں پاکستان کے لیے, اور اس سے اچھی قیادت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے مولانا صاحب آ رہے ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. دشمنوں کے ہاتھوں میں گھیر رہے ہیں بھائی, تو اللہ تعالیٰ ان کو جائز ہے. لیکن آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ہماری جو ہے نا وہ آرمی ہے, تو ان کو کنٹرول کرے گی. مولانا صاحب کو پتہ بھی چلے گا, ان سے پہلے بھی وہ ایک جو خادم سے ہاری دیوی نے کہا تھا, وہ کبھی ان کی سنی ہے آواز کہیں پہ؟ یہ سنی تو ان کی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے آواز بند کر دیں گے. ان کے جو آج کل یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا, بات میری انتہا کر دی ہے. مولانا کہنا بھی میرا خیال ہے گناہ ہے ان کو.
چلیں بہت شکریہ. میرے پاس مزید وقت نہیں ہے, میں صرف دو کالیں اور لے پاؤں گا. جی ویلکم ٹو دا شو, آپ کی آواز میں آپ کو ویلکم ہے.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں؟
میرا سراج نام ہے. دیکھیے اب یہ دیکھیے, یہ جو مولانا صاحب ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے گروپ ہے جو ٹنڈا بردار یا پتہ نہیں کس قسم کے فورس ہے, وہ تیار ہو کے آ رہے ہیں. اب یہی چیز اگر کراچی میں ہوتا تو وہ بولتے ہیں راک ایجنٹ ہے, تو کیا یہ راک ایجنٹ نہیں؟ آپ ان کا مقابل ہو, کراچی کے لوگ اگر اس طرح ہوتا تو بولتے کہ راک ایجنڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور سب کچھ نکال دیتے. تو کیا یہ راک ایجنڈ نہیں؟ یہ ان کو, یہ ہماری ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ کیا عام کے لوگ ہیں بھائی؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ایجنٹ ہے.
چلیں بہت شکریہ سر جی, آپ کے ویوز بھی سب نے سنے. لاسٹ کال ہم لیں گے, اس کے بعد مزید کال لینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا ہے.
دو ورڈ بولوں گا صرف, دو ورڈ.
جی حکم کیجئے سر. کیا
میں کہا وہ مولانا کہہ رہے آزادی چاہیے نا
جی,
آزادی بچوں کو چاہیے ان سے. بس سبل ہے ورڈ.
اچھا یعنی جی جو بچے ان کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جو بڑھ رہے ہیں بچے ان کو آزادی چاہیے, ان سے چاہیے آزادی. ان کو آزادی دلاؤ ان سے بچوں کو.
چلیں بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام کامران ہے.
جی کامران صاحب بہت شکریہ سر. اچھا ہم مزید کالیں نہیں لے پائیں گے کیونکہ میرے پاس مزید وقت بھی نہیں بچا ہے. جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو اپنا نمبر دیتا چلوں. میرا رابطے کا نمبر ہے 6472012213, اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے دو پراپرٹی اس وقت لسٹ کی ہوئی ہیں, دونوں کی دونوں پرائم لوکیشن کے اوپر ہیں, بہت مناسب قیمت پر میں نے لسٹ کی ہیں. ایک تو 3400 square feet کا ڈیٹیچ گھر ہے, کارنر لاٹ ہے, لائن ہیڈ گلف کلب سے صرف 5 minutes کی دوری پر ہے, اور گرین بیلٹ سے صرف اسٹیپ ٹو گرین بیلٹ ہے. فائنینشیل ڈرائیو اینڈ مسی ساگر روڈ کے اوپر 3400 square feet, 5 bedroom 5 washroom کے ساتھ یہ گھر صرف 12.5 lakh میں آپ کو آفر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے 380 میں 2 bedroom اور 1 washroom کے ساتھ پرائم لوکیشن بریملی سٹی سینٹر سے صرف واکنگ ڈسٹنس کے اوپر اس کو میں نے لسٹ کیا ہے. اگر آپ اس پراپرٹی کو یا اس جیسی کسی بھی پراپرٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کیجئے. میرے رابطے کا نمبر ہے 6472012213. دونوں کے دونوں جو سیلر ہیں وہ بہت موٹیویٹڈ ہیں, بیچنا چاہتے ہیں. تو آپ اس جیسی کسی بھی پراپرٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے. میرے رابطے کا نمبر ہے 6472012213. جانے سے پہلے میں اپنے بھی ویوز آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. جو مولانا آزادی مارچ کے حوالے سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی کس چیز کی آزادی ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب آزادی کا وقت تھا تب تو آپ نے اس کی مخالفت کی, آپ نے کہا کہ ہم تو اس ملک کو بنانا ہی نہیں چاہتے. جب یہ ملک بن گیا تو اس وقت آپ نے کبھی اتنی زحمت نہیں کی کہ کسی آزادی کے کی سیلیبریشن میں آپ شریک ہوں یا آپ پاکستان کے حق میں کوئی بات کریں. جب یہ چھوٹا سا پودا بڑا ہو کے تناور بن گیا تب آپ نے اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس پہ پھل آیا, جب یہ پھل دینے لگ گیا تب آپ اس کے حصے دار اور حقدار ٹھہرے. لیکن یہ بات اکثر سیاستدانوں کی ہے, صرف مولانا کی نہیں بلکہ اکثر سیاستدانوں کی یہی روش رہی ہے. لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی عوام جو کہ آلریڈی تباہی کے بالکل کنارے پہنچ چکی ہے, وہ مزید ایک بھی جھٹکا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. تو پاکستان کی اکانومی کا, پاکستان کی جو معصوم عوام ہے اس کا تھوڑا سا خیال کیجئے. میں میری یہ گزارش نہ صرف مولانا سے ہے بلکہ ہر پولیٹیشین سے ہے کہ ایک عام آدمی جو پس رہا ہے وہ اس کو چاہیے, ان پولیٹیشین کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں, نہ کہ صرف یا کرسی تیرا آسرا نہ کریں کہ صرف کرسی کے لیے, اپنی سیٹ کے لیے اور اقتدار کے لیے جو ہے نا ہر چیز کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, وہ نہ کریں. بلکہ آپ جو حلف لے کر آتے ہیں, جو عہد کر کے آتے ہیں کہ ہم عام عوام کی خدمت کریں گے, وہ کیجئے. لیکن ابھی کیا ہے, اس وقت کیا سچویشن بن چکی ہے, اس وقت سچویشن ہے کہ ہم فرقہ واریت میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, ہم ریجن میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, ریلیجن میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, لسانی تعصب میں مبتلا ہو چکے ہیں, ہم چھوٹے 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 حصوں میں سو ڈیوائڈیڈ ہیں, سو مچ ڈیوائڈیڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ صرف. اچھا میں ایک چیز کا جو ہے نا, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگتی. میں آج آپ سب لوگوں سے یہ ایک دعوت فکر آپ سب کو دینا چاہتا ہوں, میرے اپنے جتنے بھی میرے پیارے سے لسنر ہیں ان سب کو میں یہ بات ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیشین اس وقت آپ کے سامنے, آج جیسے کینیڈا کے الیکشن ہو رہے ہیں, جو پولیٹیشین آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کے دروازے پر آتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے, آپ اس کا حال دیکھ رہے ہیں اس وقت. آپ اس کو فار ایگزامپل کہ ووٹ دے کر اس کو سلیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں تو اس کے چار سال یا تین سال گزرنے کے بعد اس کا ماضی دیکھیں پھر حال دیکھیں. پہلے تو وہ یہ تھا اور اب کیا بن چکا ہے, یہ مجھے ماما آج تک سمجھ نہیں آ پایا. مجھے یہ اس بات کی سمجھ آج تک نہیں لگی کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو کیا ان کا جو حال ہوتا ہے اس وقت بہت ہی مخدوش ہوتا ہے, لیکن پارلیمنٹ کے آنے کے بعد ان کا مستقبل اتنا تابناک اور روشن ہو جاتا ہے, ملٹائی ملینر بن جاتے ہیں, بلینر کروڑ پتی بن جاتے ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں ان کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. کیسے, یہ ماما آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا پھر ناٹ اونلی دس, یہ سب کرنے کے باوجود, یہ سب ہونے کے باوجود جب یہ کام اسی طرح کرتے رہتے ہیں, جو ہی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں اور جب ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, جب ان کو پکڑا جاتا ہے, تب یہ ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آتا ہے کہ اوہ یہ تو سب کے سب دل کے مریض تھے, یہ تو بہت سخت بیماری میں کام کر رہے تھے, خدمت کر رہے تھے قوم کی, عوام کی, پبلک کی, فوراً اسپتال میں جا کے لیٹ جاتے ہیں سب کے سب, چاہے وہ خوشی شاہ ہوں, چاہے وہ میمن صاحب ہوں, چاہے وہ دوسرے پارٹیز کے لیڈران ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, مریم نواز ہوں, اور ایون ناٹ اونلی دس, کچھ پی ٹی آئی کے بھی, ان میں بہت سارے تو نہیں ہیں لیکن ان میں کچھ. لیکن جب یہ بندر بانٹ شروع ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون میرا ہے اور کون کسی اور کا ہے, بس بانٹا جاتا ہے, سب میں بانٹ لیا جاتا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک ہے آپ کے لیے, میرے لیے, پاکستان کے لیے, ہر قسم کی سوسائٹی کے لیے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ کرپشن جو ہے پوری دنیا کا ناسور ہے, پوری دنیا سے اس کو بچانا چاہیے. یہی میں گزارش اپنے لسنر کو آج یہاں کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں اس کے لیے پہلی کنڈیشن اونیسٹی ہونی چاہیے, ایمانداری ہونی چاہیے, باقی ساری چیزیں بعد میں, ڈیڈیکیشن اس کی بعد میں, اس کا سخت جان ہونا یا کیا کہ محنت کش ہونا, پبلک کا جو ہے نا وہ سرونٹ ثابت ہونا, یہ سب چیزیں بات کی. پہلے اس کے لیے اونیسٹی یعنی کہ ایمانداری پہلی شرط ہونی چاہیے. انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. میرے رابطے کا نمبر 6472012213. جانے سے پہلے ایک خوبصورت کلام, یہ بھی ایک فرمائش ہے آپ سب کی نظر. اللہ حافظ.
اب بڑا محبوب گھرانہ, بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ, بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ, ہاں بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ, ہاں بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ, بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ, بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ, غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب کا گھرانہ, بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ, بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ.
سنو ابو طالب دے گھرانے دی شان سنو کی
کہ کدی ممبر تے کھڑکے, کدی ممبر تے کھڑکے, کدی میدان تے لڑکے, کدی نیزے تے چڑھ کے, کدی خطبے پڑھ پڑھ کے سکھاوے دین بچانا ابو طالب کا گھرانا, سکھاوے دین بچانا ابو طالب کا گھرانا, سکھاوے دین ابو طالب کا گھرانا, ہاں سکھاوے دین بچانا ابو طالب دا گھرانا.
میں سوال کیتا مسلمان کولو, میں سوال کیتا اسلام کولو, کی سوال کیتا
میں پوچھیا تیری جگ تے, کہ میں پوچھیا تیری جگ تے ہے کہ توقیر ودھائی, تے محسن کون ہے تیرا صدا اسلام دی آئی, مڈا محسن ہے پرانا ابو طالب کا گھرانا, ہاں بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا,
چوئے دیکھا ہاں بڑا.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
پچھلے سال میں ڈگ فورڈ کی کنزرویٹو حکومت نے انٹیریو کی عوام کی سہولتوں پر اتنے قرض لگائے کہ اب گننے مشکل ہیں. فورڈ نے نہ صرف خاندانوں کے ہیلتھ کیئر اور بچوں کی ایجوکیشن میں قرض لگائے بلکہ 3 یونیورسٹیز تو کینسل ہی کر دی. اینڈرو شیئر اور ڈگ فورڈ کا ایک ہی مقصد ہے, ٹاپ 1% کے لیے ٹیکس کٹ اور عوام کی ضروری سہولتوں پر قرض. لیکن جسٹن ٹروڈو اور لبرل پارٹی کا ماننا ہے کہ مڈل کلاس پر ٹیکس اور بھی گھٹائیں اور سہولتیں بڑھائیں. اس اکتوبر آپ کے سامنے ایک انتخاب ہے, چوز فارورڈ.
Authorized by the registered agent for the Liberal Party of Canada.
ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ, ਬਲਾਈਂਡਸ, ਵਰਟੀਕਲਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਹਨੀਕੈਂਪਸ, ਪਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਪਿਛਲੇ 30 ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ. ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نے تہاڈا گھر پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھتے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نوں ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس این ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لئی لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا صلاح لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نوں کال کرو 416-655-2000.
لبرلز جرائم کے معاملے میں نرم ہیں، ہمارے یہاں پر تشدد جرائم بڑھ رہے ہیں، اینڈرو شیر کی سربراہی میں کنزرویٹو حکومت جرائم کے خلاف سخت ہوگی، خاندانوں پر ٹیکس کم کرے گی اور کینیڈا کی معاشی ترقی اور خوشحالی پر توجہ دے گی، براہ کرم 21 اکتوبر کو اپنے کنزرویٹو امیدوار کو ووٹ دیں۔
کمیونٹی دا سب تو پرانا تے وڈا شو روم ہے سوڈی فرنیچر، بہترین آفٹر سیل کسٹمر سروس تے فائنانسنگ اویلیبل، 74 ڈیون روڈ تے 142 کینیڈی روڈ ساؤتھ برمپٹن، کال 9058747171، سوڈی فرنیچر۔
خواتین و حضرات، ہم لا رہے ہیں کینیڈا میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے پہلی بار الیکشن کینیڈا کی لائیو نشریات آپ کے اپنے چینل ای آواز پر، تازہ ترین نتائج، دلچسپ